मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी का नौवां दिन, आखिरी दिन। आज के मनन चिंतन के लिए जो विषय लिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्यादा चर्चित एक विषय है, वो है धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता। हम मां मरियम के द्वारा ईश्वर से प्रार्थनाएं रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन बहुत बार प्रश्न उठाया जाता है कि क्या यह प्रार्थना वास्तव में मां मरियम ईश्वर से कर सकती हैं, और यदि मां मरियम ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हैं वो प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है, कितनी प्रभावशाली है। इस विषय पर हम मनन करेंगे और इस महत्वपूर्ण विषय को तीन भागों में बांटकर हम मनन करेंगे। पहला है मां मरियम की प्रार्थना में विश्वास, यानी मां मरियम जो मध्यस्थता करती है हमारे लिए, उस प्रार्थना में हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा है यदि हम कर सकते हैं तो इस विश्वास का, उनकी प्रार्थना में हमारे विश्वास का आधार क्या है। और तीसरा है क्या मां मरियम की प्रार्थना ईश्वर को प्रभावित कर सकती है। आइए हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना के रूप में हम मां मरियम की मध्यस्थता के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। वचन में लिखा है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, वो है स्वयं ईश पुत्र प्रभु येसु ख्रिस्त। एक ही व्यक्ति में दोनों स्वभाव, यानी ईश्वरीय व्यक्ति, उनमें दोनों स्वभाव हैं, ईश्वरीय और मानवीय। इन दोनों स्वभावों के उस एक ही व्यक्ति वास्तव में सच्चा मध्यस्थ है। लेकिन हम पवित्र वचन में भी पढ़ते हैं और कलीसिया भी हमें सिखाती है कि मां मरियम और अन्य संत लोग जो आज स्वर्ग में हैं, वे भी हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनकी प्रार्थना प्रभावशाली होती है। जितनी हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हैं, उससे कई गुना ज्यादा उनकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, इतिहास है। हम कलीसिया के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो हम इसको अनुभव करते हैं, जान सकते हैं, और इसके बारे में हम बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, हम मां मरियम के बारे में ज्यादा मनन करेंगे। इसके बारे में हम इसके पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, संतों की सहभागिता क्या होता है, उसका लाभ कैसे हमें उठाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ वीडियोस बनाए हैं। एक दो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उनको देखिए और ज्यादा गहरे रूप से समझने की कोशिश करिएगा। पवित्र वचन में हम मां मरियम को प्रार्थना करने वाली एक महिला के रूप में देखते हैं। धन्य कुंवारी मरियम प्रार्थना करने वाली एक महिला, और उनके इस गुण के कारण ही वास्तव में वे ईश्वर की मां बनने पाई। प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बोलना नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ जो गहरा संबंध है, जो वरदान ईश्वर मां मरियम को दिए थे और मां मरियम उसके लिए हां कहकर उस प्रार्थना में हमेशा लीन रहा करती थी, केवल मांगने का नहीं। हम पवित्र बाइबल में एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही सुंदर सी प्रार्थना मां मरियम की हम देख सकते हैं, जिसको हम पाते हैं लुकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 से लेकर 55 तक, जिसको हम मरिया गान कहते हैं या मरियम का भजन कह सकते हैं, बाइबल में वैसे ही लिखा हुआ है। तो इस भजन में हम देखते हैं इसके गुण को, उनके मनोभावनाओं को हम देख सकते हैं, जहां मां मरियम ईश्वर और उनके बीच के संबंध को यहां प्रकट करती है, और यहां वह कुछ मांग नहीं रही है बल्कि ईश्वर का गुणगान कर रही है। एक गीत है ये वास्तव में। यहां हम उनकी मानसिकता, ईश्वर के प्रति उनके मनोभाव और उनकी दृष्टिकोण में अपने आप को कैसे रखकर मां मरियम जीवन बिता रही थी, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस वचन को पढ़ने से हम समझ सकेंगे। इस पर भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप जरूर उनको पढ़िएगा और एक एक शब्द को आप मनन करते जाइए, तब आपको पता चलेगा। और यहां एक एक वचन लेकर मैं बताना चाहूंगा, वो है पद संख्या 48 में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। क्यों? 49, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। यही वो महत्वपूर्ण बात। साथ ही इसमें, इस गीत में जितने भी बातें हैं उसको हम पढ़ेंगे तो मां मरियम की मानसिकता को, मनोभावना को हम जान सकेंगे। इसलिए संतगण इस गीत को और मां मरियम की जो प्रार्थना करने की जो शक्ति और प्रार्थना करने की जो स्वभाव वो आदत, इन सब को देखकर मां मरियम की मध्यस्थता वे मांगने लगे, क्योंकि प्रेरितगण मां मरियम के साथ रहकर प्रार्थना किया करते थे, जिसके बारे में हम प्रेरित चरित्र में भी पढ़ सकते हैं। प्रभु येसु के स्वर्ग आरोहण के बाद हम वहां कलीसिया को प्रार्थना करने वाली कलीसिया के रूप में देखते हैं, और इस प्रार्थना करने वाली इस कलीसिया का एक नमूना, एक उदाहरण मां, वहां स्वयं मां मरियम उपस्थित रही। और उनकी इस प्रार्थना को यदि हम देखें, मनन करें, तो हमें पता चलता है कि यह पवित्र युक्रिस्त से मिलता जुलता, मतलब बलिदान का केवल नहीं, क्योंकि युक्रिस्त का अर्थ ही धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। और मरिया गान में हम ध्यान से पढ़ने से हमें वो धन्यवाद की भावना ही वहां दिखाई पड़ती। इसलिए हम मां मरियम के इस गान को हम पवित्र युक्रिस्त के साथ में भी लोग जोड़कर देखते हैं। अब हम मनन चिंतन के पहले बिंदु पर आते हैं, वो है मां मरियम की प्रार्थना में विश्वास, यानी हम कितना उनकी मध्यस्थ प्रार्थना में विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। मां मरियम अपने पुत्र से प्रार्थना करती, पुत्र ये कौन है? स्वयं ईश्वर है और स्वयं मां मरियम का पुत्र है। इसलिए हम मां मरियम की इस प्रार्थना में हम विश्वास कर सकते हैं, उनकी मध्यस्थता में हम विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। वो मां होने के नाते हमारे लिए अपने पुत्र से विशेष प्रार्थना करती है, और जैसे मैंने कहा प्रारंभिक कलीसिया में उनकी प्रार्थना में उपस्थिति, मां मरियम की प्रार्थना में उपस्थिति हमें प्रेरित करती है। इसलिए कलीसिया हमेशा से सिखाती आई है कि उनके स्वर्ग में उद्ग्रहण के बाद में भी मां मरियम ये कार्य, ये जिम्मेदारी निभाती आ रही है। केवल इस धरती पर ही वो वैसे प्रार्थना करती नहीं रही, लेकिन हमेशा उनके स्वर्ग में उद्ग्रहण के बाद में भी वही कार्य वो जारी रखती हैं, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो जिम्मेदारी निभाती आ रही है। और उनके दर्शन अलग अलग जगहों पर, जैसे हम हमारे भारत देश के वेलांगनी के बारे में भी हम कुछ दिन पहले मनन किए थे, जहां वे 3 बार दर्शन दी थी, और अलग अलग जगहों पर हम बात करें साक्षात दर्शन वो दिखाई देने का। अन्यथा भी बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मां मरियम की उपस्थिति का अनुभव जरूर करते रहते हैं। और प्रारंभिक कलीसिया से ही जो प्रार्थनाएं कलीसिया में चलती आ रही है मां मरियम के नाम पर, उन प्रार्थनाओं में हम यदि मनन करें या उसका मूल्यांकन करके देखें, तो हमें पता चले है कि कलीसिया एक दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ मां मरियम की प्रार्थना में भरोसा करती रही है। इसको उन प्रार्थनाओं में हम देख सकते हैं। इसको हम एक तुलना भी कर सकते हैं, जैसे एक बच्चा डर गया, मान लीजिए चिंता में पड़ गया, वो जब अपनी मां साथ में हो जाती है, वो बच्चा निश्चिंत होकर अपना जीवन बिताने लगता है और उस चिंता को छोड़ देता है, क्योंकि उसको पूरा भरोसा है अपनी मां पर, मेरी मां मेरे साथ में है, मेरी मां मेरी इन जरूरतों को पूरी करेगी। वही विश्वास हर क्रिस्तीय जो मां मरियम की मध्यस्थता मांगता है वास्तव में वो कर सकता है, क्योंकि वो ईश्वर की भी मां है, हमारी भी मां है। तो मां मरियम हमारे और प्रभु येसु के बीच एक मध्यस्थ बनकर अपने पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना करने वाली के रूप में यहां दिखाई देती है। मनन चिंतन का दूसरा बिंदु है मां मरियम की इस मध्यस्थ प्रार्थना में हमारा विश्वास का आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है। वो एकदम क्लियर है, वो है मां मरियम का प्रभु येसु के साथ का संबंध। जरूर प्रभु येसु उनके भी ईश्वर है, लेकिन उनका और प्रभु येसु के बीच में एक विशेष संबंध मां और पुत्र का। स्वयं ईश्वर मां मरियम के गर्भ में 9 महीने तक रहे, और जैसे एक मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही मां मरियम भी प्रभु येसु का पालन पोषण की, उनको दूध पिलाई, उनको खिलाई, उनको सिखाई, उनके साथ रही, कब तक? उनकी मृत्यु तक। हमेशा मां मरियम को हम प्रभु येसु के साथ चलते जीते हम देख सकते हैं। इसलिए कलीसिया में जो भी त्योहार प्रभु येसु के लिए रहता है, हम वहां उस त्योहार में मां मरियम को भी देख सकते हैं। इसलिए मां मरियम के लिए भी वो त्योहार लिया जाता है। क्यों? जहां प्रभु है वहां मां मरियम है, वहां मां मरियम है वहां प्रभु यीशु है। दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, मां और बेटा। देखिए उस नाम में ही वो संबंध है। वही है हमारे मां मरियम की प्रार्थना में विश्वास और भरोसे का आधार, फाउंडेशन वही है। और ये जो संबंध है ये केवल शारीरिक नहीं, एक आत्मिक संबंध भी हमेशा जुड़ी रही, हमेशा। कैसे हम दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं? हम देखते हैं जब भी मां मरियम के जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, वो उनको अपने मन में संजोए रखकर उस पर मनन करती है। वही ईश्वर का वचन। वास्तव में कलीसिया मनन करने के लिए मां मरियम से सीखी। मां मरियम यही करती, ईश्वर का वचन सुनती, उनको अपने दिल में संजोए रखती, उस पर मनन करती। और ये वचन केवल शब्द नहीं जो हम सुन रहे हैं, बल्कि एक व्यक्ति, त्रिएक ईश्वर में दूसरा व्यक्ति स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त। और ये जो संबंध वहां तक रुकता नहीं, ये भरोसा और भी बढ़ जाता है जब प्रभु यीशु अपनी मां को हमारी मां के रूप में हमें दिए। एक जिम्मेदारी भी मां मरियम के कंधों पर रख दिया गया हमारी मुक्ति के लिए, मानव जाति की मुक्ति के लिए। तो ये दोनों तरफ, जैसे मैं कुछ समय पहले प्रारंभ में कहा, प्रभु यीशु क्रिस्त की सच्चे मध्यस्थ हैं ईश्वर और मनुष्यों के बीच में, क्योंकि उनमें दोनों स्वभाव है, ईश्वरीय और मानव। और मां मरियम में हम देखते हैं वो प्रभु यीशु और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता करती हैं, विशेष रूप से। जरूर पिता ईश्वर से भी और पवित्र आत्मा से भी वो प्रार्थना करती हैं, लेकिन विशेष रूप से अपने पुत्र से। और यहां कैसे वे मध्यस्थ वास्तव में बन सकती हैं? क्योंकि ये दोनों तरफ जो है उनके पुत्र पुत्री हैं। प्रभु यीशु भी उनके पुत्र हैं और हम सभी भी उनके पुत्र पुत्रियां हैं। तो हम सभी की मां वो है, स्वयं प्रभु यीशु की भी वो मां है और हर एक मनुष्य की भी वो मां है। इसी के बारे में हम कुछ दिन पहले भी मनन किए थे कि मुक्ति पाने वालों की मां है मां मरियम। तो इसलिए हम दृढ़ विश्वास के साथ मां मरियम से मध्यस्थता मांग सकते हैं। और इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, नहीं। ये एक परिवार की स्थिति को हम देखें, एक बच्चा अपने पिताजी के पास कुछ मांगने से पिताजी जरूर देते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, अपनी मां को भी साथ में ले जाता है, मां से पहले ही कह देता है मां मुझे ये सब दिलवाना। मां बोलती है चलो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसा सब करना पड़ेगा, कंडीशन उसको हम आगे देखेंगे। तो मां हमारे साथ चलती है, हम बात करते हैं, मां भी बीच बीच में जोड़ देती है। और कहीं पिताजी थोड़ा सा मन बदलने की कुछ स्थिति आ जाती है तो मां तुरंत और कुछ बातों को बढ़ा देती है और कैसे भी करके हम जो मांग रहे हैं उसको दिला देती है। उसी को हमें यहां भी देखने की जरूरत है। हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि स्वर्गीय जीवन एक प्रकार से एकदम अलग है, नहीं है। वास्तव में हमारे परिवार, जैसे हम मनन करते आ रहे हैं, हमारे क्रिस्तीय परिवार उस स्वर्गीय जीवन को, ईश्वरीय परिवार को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जैसे हमारे पारिवारिक जीवन यहां है, माता पिता और बच्चों के बीच में जो संबंध, वही संबंध पूर्णता में उस स्वर्ग में है। संबंधों की पूर्णता, परिपूर्णता, परफेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप्स, उसको हमें वहां जाकर हम अनुभव करेंगे। वही चीज हम संतों के बीच में, यानी हर क्रिस्तीय जो इस दुनिया में जीवित है या जो मरकर अभी कुछ लोग स्वर्ग में है या सोदाग्नि में है, सबों के बीच में यही संबंध है। तो वही प्रेम हम मां मरियम के जीवन से भी और हमारी प्रार्थनाओं के साथ में भी हम जुड़कर ये कर सकते हैं। जो कंडीशन मैं कह रहा था, जरूर मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 2:5 में हम उसको देखते हैं। मां मरियम उस घर की जरूरत को लेकर अपने पुत्र के पास जाती है और पुत्र एक प्रकार से मना करने के बारे में हम वहां देखते हैं। वे कहते हैं, भद्रे आपको और मुझको क्या, मेरा समय अभी तक नहीं आया। लेकिन मां मरियम क्या करती है? सेवकों के पास जाती है, काम करने वालों के पास जाती है और कहती है वो जो कुछ कहे वही करना। देखिए वहां एक जरूरत थी, यानी दाखरस खत्म हो गया। मां मरियम मध्यस्थता प्रार्थना लेकर अपने पुत्र के पास जा रही है और पुत्र एक प्रकार से मना कर रहे हैं, लेकिन मरियम सेवकों के पास जाकर काम करने के लिए कहती है, तैयारी करने के लिए कहती है, और कहती है वो जो कुछ कहे वही करना। हम भी जब कुछ जरूरतों को लेकर प्रभु यीशु के पास जाते हैं, मां मरियम भी प्रभु से बात करने के बाद हमारे पास भी आकर ऐसे ही कहती है, वे जो कुछ कहे वही करना। लेकिन अधिकांश हम ना तो मां मरियम की बात सुनते हैं ना प्रभु यीशु की बात सुनते हैं। इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में जब हम कुछ मां मरियम के द्वारा ईश्वर से मांगते हैं, यदि हमारे जीवन में वो पूरा नहीं हो रहा है तो उसका कारण यही है, प्रभु की आवाज नहीं सुनना, मां मरियम की आवाज नहीं सुनना, या संतों की बात नहीं मानना। जब हम इन सभी लोगों की बातों को मानकर प्रभु यीशु की इच्छा को जब हम पूरी करते हैं तो हमारे जीवन में हमारी मांगें जरूर पूरी होगी। एक छोटी सी उदाहरण के लिए आप मान लीजिए प्रभु से जाकर कुछ मांग रहे हैं। छोटी सी उदाहरण लेते हैं, हम खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं। जैसे हम माता पिता से जाकर कुछ मांगते हैं, मां बोलती है बेटा वो थाली लेके आओ, हम थाली लेकर नहीं आ रहे हैं, अब ये मांग रहे हैं खाना, और मां बोली बेटा थाली लेके आना, हम प्लेट लेकर आ नहीं रहे हैं, मां खाना कैसे देगी। एक तो छोटा सा कंडीशन है, बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण है, एक हमें लगेगा इसमें कोई दम नहीं, फिर भी एक छोटा सा उदाहरण। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु के पास जाकर, जैसे हम कहेंगे मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा कि हमारे परिवारों में शांति की जरूरत, अब प्रभु यीशु क्या कहेंगे, जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन जब हम उसको सुनेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं, परिवार में शांति कहां से आएगी। तो हमारी जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाना अनिवार्य है। वही शिक्षा मां मरियम भी हमें सिखाती है। और हमारे मनन चिंतन का तीसरा बिंदु है, क्या मां मरियम की प्रार्थनाएं ईश्वर को प्रभावित कर सकती हैं? कैन द प्रेयर्स ऑफ द ब्लेस्ड मदर इन्फ्लुएंस गॉड? उसके साथ मैं एक प्रश्न जोड़ना चाहूंगा हमारे मनन चिंतन के लिए, क्या हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर को प्रभावित कर सकती हैं? मतलब क्या जब हम कुछ मांगें क्या वो पूरी होती है कि नहीं होती है? क्या ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? यदि सुनते हैं, यदि हमारी मांगें ईश्वर पूरी करते हैं, तो क्या ईश्वर मां मरियम की प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे? आइए थोड़ा सा मनन करते हैं। यदि हम कहें कि मां मरियम की प्रार्थनाएं ईश्वर को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, तो हम जो बोलते हैं वो एक फॉर्मेलिटी, नाम के वास्ते हम मां मरियम से जाके मध्यस्थता मांगते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। ना आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है। अभी वेलांगनी में हम जाएंगे तो वहां हजारों हजारों लोग वहां इकट्ठे होंगे, आज आप जाएंगे तो वहां खड़े नहीं रह पाएंगे, उतनी भीड़ त्योहार के समय में विशेष रूप से, इतने सारे लोग हजारों हजारों में, और कुछ लोग पैदल भी आए होंगे, कितना किलोमीटर, 200 300 किलोमीटर पैदल चलकर। और वहां एक म्यूजियम रखा हुआ है साक्षी के लिए, जहां हम जो निसंदान लोग और बहुत सारे वो अनगिनत चमत्कार वहां हम जाकर देख सकते हैं, वो एक सीमित गिनती में ही वहां हम देख पाएंगे। अन्यथा लोग हर दिन अपने जीवन में मां मरियम की मध्यस्थता का अनुभव अपने जीवन में जरूर करते हैं, आप भी करते होंगे, अन्यथा इस नवरोज प्रार्थना के 9 दिन में इतने लंबे समय तक आप इसमें सहभागी नहीं होते होंगे। यहां एक बात हमें सामने रखने की और मनन करने की जरूरत है, क्यों मां मरियम की प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है? सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ईश्वर की इच्छा पूरी करती, ये सबसे महत्वपूर्ण। वो ईश्वर की दासी के रूप में अपने आप को अर्पित की थी, वो ईश्वर से वही कही थी, मैं प्रभु की दासी हूं, सेविका नहीं, दासी। मतलब जो कुछ ईश्वर कहेंगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं उसी को करती रहूंगी, दासी। वो केवल बोली नहीं, उसको अपने जीवन में निभाती रही। इसलिए वो ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाली व्यक्ति थी, और ईश्वर हमारी मुक्ति चाहते हैं, और उस मुक्ति कार्य में मां मरियम जो कार्य इस दुनिया में रहकर निभाती रही, वही कार्य उस स्वर्ग में भी रहकर निभाती हैं। इसलिए उनकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती हैं। कारण पहला, वे ईश्वर के अधीन में रहकर कार्य करती थी और करती भी हैं। दूसरा, वो ईश्वर की इच्छा पूरी की और आज भी पूरी करती हैं। कैसे? ईश्वर चाहते हैं कि हम हर मनुष्य मुक्ति पाए, और उस मुक्ति कार्य में मां मरियम हमारे लिए मध्यस्थता प्रार्थना करती रहती है। मध्यस्थ मतलब दोनों तरफ बात करना, एक ही तरफ नहीं, मैं कुछ समय पहले यही बात कर रहा था। मध्यस्थ का मतलब दोनों तरफ बात करना चाहिए, एक तरफ में बात कर काम करना नहीं है। वो हमसे भी बात करती है, ईश्वर से भी बात करती है, इसलिए वो प्रभावशाली होती है। और एक कारण क्यों उनकी मध्यस्थ प्रार्थना प्रभावशाली होती है, वो इसलिए वो अपने लिए कुछ भी नहीं करती, वो जो कुछ करती है वो ईश्वर की महिमा के लिए और लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए करती। हम जो पहला चमत्कार संत योहन रचित सुसमाचार में देखते हैं, उसमें उस घर के लोग जाकर मां मरियम से कुछ मांगते नहीं है, वे स्वयं जाकर उस परिवार के लिए अपने पुत्र से मांग करती। जब कोई ईश्वर के पास जाकर निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए मांगते हैं, वो प्रार्थनाएं ईश्वर जरूर सुनते हैं, क्योंकि उसमें प्रेम है, निस्वार्थ भावना है और सच्चाई है। वैसे ही मां मरियम हम हर एक के लिए करती हैं। इसी भावना को मां मरियम आज भी अपने में रखकर, स्वर्ग में रहकर हमारे लिए विनती करती रहती है। जैसे उस काना के विवाह में हुआ था, वो प्रभु के पास जाकर उस घर के लोगों के लिए प्रार्थना की, वैसे ही मां मरियम अपने पुत्र के पास रहकर अपनी संतानों के लिए वो प्रार्थना करती रहती हैं। हे हमारे पिता, प्रार्थना में भी हम जो कहते हैं, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हम केवल शब्दों में कहते हैं, लेकिन मां मरियम इसको अपने जीवन द्वारा पूरी की और आज अपनी मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा पूरी करती। तो उनकी प्रार्थना प्रभावशाली जरूर होती है। इसलिए हम बच्चों के मनोभाव लेकर, संतान की मनोभावनाओं को लेकर हम हमारी मां के पास जा सकते हैं। इसलिए हम मां मरियम की मध्यस्थता ना केवल मांग सकते हैं, हमें मांगना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मां है। हम इस ईश्वरीय अनुग्रह के इस जीवन में और भी गहराई से जाने के लिए हम हमारी मध्यस्थता मांगे। और ना केवल, जैसे मैं हमारे चैनल में देख रहा हूं, बहुत सारे प्रार्थनाएं डाली जाती हैं, वो केवल इस दुनियाई चीजों की मांग हो रही है। हम इनसे थोड़ा सा ऊपर उठकर स्वर्गीय चीजों की मांग करें, स्वर्गीय वरदानों की भी मांग करें, ईश्वर की महिमा के लिए मांग करें, ईश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए मांग करें, ताकि हम उस मां की सच्ची संतान सिद्ध हों, उनकी मनोभावना हम में भी रखें। भाई ईश्वर जो मां मरियम की मध्यस्थता हमें दिए हैं, उन्हें हमारी मां के रूप में दिए हैं, वही ईश्वर हमें भी उनकी संतान बनाने की जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हम ईश्वर का और हमारी मां का साथ देने पाए, और ईश्वर की महिमा में जैसे हमारी मां प्रवेश कर अभी जीती हैं, वैसे हम भी उस महिमा के सहभागी होने की कृपा ईश्वर मां मरियम के द्वारा हम सबों को प्रदान करें। अब हम विलांगनी माता के नवरोजी प्रार्थना के 90वें दिन में प्रवेश करेंगे। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना।
नवा दिन। हे प्रभु की सारी कृतियों, स्वास्थ्य की माता को धन्य कहो, स्वर्ग की रानी को स्तुति करो। हे प्रभु के दूतों, स्वास्थ्य की माता की प्रशंसा करो। हे परलोक के निवासियों, स्वर्ग की रानी के गुण गाओ। हे स्वर्ग के सब संतों, स्वास्थ्य की माता का गुणगान करो। हे आकाश के तारागण, स्वास्थ्य की माता की कीर्ति गाओ। हे वर्षा और ओस, स्वर्ग की रानी को धन्य कहो। हे अग्नि और उष्म, निष्कलंका की स्तुति करो। हे शरद और धूप, स्वर्ग की रानी की प्रशंसा करो। हे तुषार और पाले, स्वास्थ्य की माता के गुण गाओ। हे बर्फ और सर्दी, स्वर्ग की रानी का गुणगान करो। हे ओसकणों और हिमपातों, निष्कलंका का गुणगान करो। हे रात और दिनों, स्वर्ग की रानी की कीर्ति गाओ। हे आलोक और तम, स्वास्थ्य की माता को धन्य कहो। हे विद्युत और मेघ, स्वर्ग की रानी की स्तुति करो। हे पृथ्वी, तू अपनी रानी की प्रशंसा कर। हे पर्वतों और पहाड़ियों, स्वास्थ्य की माता का गुणगान। हे सारी पृथ्वी की वनस्पति, निष्कलंका का गुणगान करो। हे झरनों, स्वास्थ्य की माता का यशगान करो। हे समुद्रों और नदियों, निष्कलंका की कीर्ति गाओ। हे मत्स्यों और जलचरों, स्वास्थ्य की माता की स्तुति करो। हे आकाश के सारे पक्षियों, स्वास्थ्य की माता की स्तुति करो। हे वनचरों, स्वास्थ्य की माता के गुण गाओ। हे मानव पुत्रों, स्वास्थ्य की माता के गुणगान करो।
हे प्रभु के याजकों व धर्मियों, स्वास्थ्य की माता का गुणगान करो। हे आत्माओं, निष्कलंका की कीर्ति गाओ। हे संतों और पापियों, स्वास्थ्य की माता पर आशा रखकर प्रार्थना करो। आमीन।
स्वास्थ्य की माता की स्तुति विनती।
प्रभु दया कर,
प्रभु दया कर,
क्रिस्त दया कर,
क्रिस्त दया कर,
प्रभु दया कर,
प्रभु दया कर,
क्रिस्त हमारी सुन,
क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
स्वर्गवासी पिता ईश्वर,
हम पर दया कर।
पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्ति दाता,
हम पर दया कर।
पवित्र आत्मा ईश्वर,
हम पर दया कर।
पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर,
हम पर दया कर।
आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
विश्व सृष्टि के पूर्व निश्चित, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
आदि में देव दूतों को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
आदम को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
पाप तम को दूर करने वाली प्रकाश पुंज, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
नबियों द्वारा भोर का तारा सूचित, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
लाभप्रद मेघ स्वरूप, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
भलाई के पात्र, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
शैतान का सिर कुचलने वाली, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
राजकुल में श्रेष्ठ वंशज, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
संत योखिम और अन्ना की पुत्री, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
दूतों और संतों से अधिक प्रज्वल, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
सर्वोत्तम भक्तिमय, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
ईश पुत्र से संयुक्त, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
सब संतों से श्रेष्ठ, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
तेरे जन्म पर स्वर्ग में जय जयकार हुआ, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
जन्मते ही ईश्वर को अर्पित, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
अत्यधिक धूरम नाम से सुसज्जित, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
सर्वश्रेष्ठ कुमारी, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
सभी मठ वासिनियों का आदर्श, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
पीड़ितों को धैर्य देने वाली, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
अपने भक्तों का दृढ़ आसरा, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
सब संतों का सरताज, हे स्वास्थ्य की माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर।
हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
प्रभु हमें क्षमा कर।
हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
प्रभु हमारी प्रार्थना सुन।
हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर।
हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु ईश्वर,
तूने निष्कलंक कुंवारी मरिया को सब कृपाओं से भूषित किया और तेरे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए उसे चुन लिया। हमें यह कृपा दे कि हम उसकी प्रार्थना के द्वारा अकाल, युद्ध और सभी रोगों से मुक्त हो और आनंद के साथ स्वर्ग सिधार सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
वेलांगनी माता से रोगियों की प्रार्थना।
हे कुमारियों की कुमारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और शक्ति पर पूरी आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। मेरा रोग दूर कर कि मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊं। सभी रोगियों को ढाढ़स दिला, यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला।
उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, मेरे कष्टों को दूर कर, अथवा हे स्वास्थ्य की माता, मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया, यह तो निश्चय है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है, इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही ख्रिस्तियों की सहायता है, ख्रिस्त की माता होने से तू ही ख्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा ख्रिस्तीय जीवन बिता सकूं। आमीन।
आत्मा शरीर की जरूरतों में प्रार्थना।
मेरी स्वामी, तू ईश्वर द्वारा दिया गया मेरा सच्चा सहारा है। आतंक के समय, विश्राम के शिविर, पाप के अंधकार में लड़खड़ाती आत्माओं के प्रकाश, निर्बलों के बल, दरिद्रों के धन, पीड़ितों की आशा, मानव प्रेमी ईश्वर की माता होने के नाते मुझ पर दया कर। तू मुझे भली भांति जानती है, इसलिए मैं तुझसे यह विनती करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, कृपा पूर्ण मरिया, पापियों की शरण, पाप सागर में डूबे लोगों के सहारे तेरी सहायता से दास मुक्ति पाते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य, पीड़ितों के सहारे, संसार मुक्ति के सिंहासन, तेरी शरण में आए मुझ पापी को अस्वीकार मत कर, परंतु मेरी याचना स्वीकार कर। आमीन।
वेलांगनी माता से नवरोजी प्रार्थना।
हे अति पवित्र कुमारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ, जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि मेरी ये अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला।
यहाँ अपनी मांगे रखें।
हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नौरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नौरोजी प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन और मेरे नौ प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
हे ईश्वर की पवित्र माँ,
संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पूर्ण कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी के द्वारा ईश्वर हम सबों को, आप सबों को विशेष आशीष प्रदान करें।